ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च दिव्यदवृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमदरत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमदराधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठादिभिर्सेव्यमानौ स्मरामि। वन्दे नवघनश्याम द्विभुजमुरलीधरं पीताम्बरं धरं देवम् शरदं पुरुषोत्तमं। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म संहिता की यह प्रवचन श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और आज की श्रृंखला में हम विष्णु तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्म संहिता के 46वें श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, दीपाचिरेव हि दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। वे यहाँ पे एक उत्तम उदाहरण देते हैं भगवान विष्णु और उनके अनेक अवतार जो है, विशेष करके पुरुषावतार में महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षय विष्णु और फिर शिरोधक्षय विष्णु, और फिर शिरोधक्षय विष्णु से जो अनंत उनके लीला अवतार आते हैं उनका वर्णन और उनके शक्ति के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहां पे कहते हैं कि दीपार्चिर एवही, एक दीप की शिखा ही जैसे, दीप की शिखा, शिखा यानी ज्योत, कोई भी हम दिया या दीप जलाते हैं तो उसके एक अग्नि की ज्योत बनती है, उसको शिखा कहा जाता है। तो दीपाचिर एवही, एक दीप शिखा ही जैसे दशांतरम अर्थात एक दूसरी बत्ती को अभिपेत्य प्राप्त होकर दीपायते एक दूसरे दीप के रूप में प्रकाशित होती है। विवृत्त हेतु समान धर्मा, और प्रकाश कार्य में पूर्व दीपक की भांति ही प्रकाश देती है। तादृक एव ही यह, उसी प्रकार मूल दीप स्वरूप जो विष्णुतयाच दूसरे दीप रूप विष्णु रूप में विभाति जो प्रकाशित होते हैं तम उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता। तो अनुवाद इस प्रकार से कि जिस प्रकार एक मूल प्रदीप की शिखा दशांतर में यानी अन्य वर्तिका में प्राप्त होकर उसके तुल्य दूसरे प्रदीप के रूप में परिणित होकर मूल प्रदीप की भांति ही प्रकाशित होती है, उसी प्रकार जो मूल विष्णु कारणवारी में शयन करने वाले महारूप विष्णु का रूप धारण करते हैं, ऐसे गोविंद जो आदि पुरुष है मैं उनका भजन करता हूं। तो यहां पे क्रम प्राप्त हम देखते हैं कि जैसे पिछले श्लोकों में वर्णन किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु। तो यहां पे बताते हैं कि पहले दुर्गा देवी के बारे में हमने चर्चा की जो कि इस धराधाम की अधिष्ठाती देवता है, फिर उसके ऊपर जो शिवलोक है उसके अधिष्ठाती देवता जो शिव है उनके बारे में हमने चर्चा की, और उससे ऊपर जो लोक है जिनको वैकुंठ लोक कहा जाता है, जहाँ पे भगवान श्री विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में विद्यमान है, वहाँ के अधिपति जो कि श्री हरि है, श्री विष्णु है, जो भगवान के गुणावतार है, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। जैसे एक मूल दीप से हम दिवाली के समय देखते हैं कि कई अनेक असंख्य दीप हम प्रज्वलित करते हैं, और सब दीपों में प्रज्वलन जो है, प्रकाश जो है, वो एक ही प्रकार से रहता है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के कई अंश कला अवतार है। जैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में कहा गया है, 24 श्लोक में, कि एते च अंश कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण ये परम पुरुष है, अवतारी है, अवतार नहीं है। भ्रामकता के कारण और पूरी तरह से शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण सामान्य जन भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं, बल्कि ये उल्टा है। ब्रह्म संहिता में जैसे यहाँ पे बताते हैं कि विष्णुतया विभाति, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मूल दीपक से आप असंख्य दीपमाला प्रज्वलित कर देते हैं और उन दीपमालाओं में उसी प्रकार का प्रकाश विद्यमान रहता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जो अंश रूप है महाविष्णु, जिनको कारण विष्णु कहा जाता है, जो कि कारण सागर में निवास करते हैं, उनसे गर्भोदकशायी विष्णु आते हैं जो हर एक ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं। अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो वैसे ही ये अनेक असंख्य विष्णु तत्व है, विष्णु अवतार है। विष्णु तत्व तो एक ही है, लेकिन भगवान विष्णु के अनंत अवतार और अनंत रूप है, और वो अनंत वैकुंठों में निवास करते हैं, और उनमें वही तेज शक्ति विद्यमान है जो कि भगवान श्री कृष्ण में है। उसी का ही विश्लेषण यहां पे ब्रह्मा जी करते हैं, और श्रीपाद जीव गोस्वामी अपनी टीका में कहते हैं कि एक मूल प्रदीप से जैसे बहुत से प्रदीप प्रज्वलित होते हैं और सब प्रदीप समान रूप से प्रज्वलित होते हैं, वैसे ही यद्यपि श्री गोविंद के अंश कारण आर्णवशायी महाविष्णु है और उनके अंश गर्भोदकशायी विष्णु और उनके अंश है क्षीरोदकशायी विष्णु, तथापि मूल महाप्रदीप से क्रम परंपरा में अतिशय क्षुद्र आकार वाले प्रदीप से निर्गत ज्योति मूल महाप्रदीप तथा दूसरे प्रदीपों की ज्योति एक समान ही निर्मल होती है। ज्योति के विषय में सबका साम्य है, किंतु लीला हेतु तमोगुण के अधिष्ठाता होने के कारण कज्जलमय प्रदीप शिखा स्थानीय शंभु का श्री गोविंद के साथ साम्य धर्म नहीं है। महाविष्णु भी श्री गोविंद के कला विशेष है, इसका आगे विवेचन किया जाएगा। तो ये जो प्रस्तुत श्लोक है, इसमें हरिधाम के जो अधिष्ठाता हरि है, जिनको नारायण, विष्णु आदि नाम से जाना जाता है, और भगवान के स्वांश तत्व के रूप में इनके बारे में कहा जाता है। परम व्योमपति अर्थात वैकुंठ के अधिपति जो श्रीमन नारायण है, वे श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है, और उनके अंश जो प्रथम पुरुषावतार है वे है कारणोदक शाही महाविष्णु। उनके अंश द्वितीय पुरुषावतार जो है वो है गर्भोदशाही विष्णु, और उनके अंश तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदकशायी विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ ही है कि जो सर्वव्यापक है, और मायिक जगत में अवतारित होने के पश्चात भी वे इस माया के तीन गुणों से परे हैं। और ये जो श्लोक हम जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो प्रस्तुत श्लोक है, इस श्लोक में क्षीरोदशायी विष्णु तत्व का निरूपण किया जाता है, जो कि भगवान का स्वांश विलास रूप है। थोड़ा सा सैद्धांतिक भाग है, अगर इसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो मन की जो भ्रामकता है कि भगवान श्री कृष्ण को श्री विष्णु का अवतार मानना, उससे हम मुक्त हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार सकते हैं। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए। और भगवान श्री विष्णु जिनका भी वर्णन हो रहा है, वे सत्व गुण के गुणावतार हैं और स्वरूपता श्री गोविंद ही इस भौतिक में धराधर पे जीवों के उद्धार करने हेतु इन स्वांश रूपों में अवतरित होते हैं। और ये जो विशेष रूप है भगवान का विलास रूप, ये हर एक प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। वे ही सर्वसाक्षी है जो हमारे हर कार्य हर विचार को अच्छी तरह से जान लेते हैं, और वही हमारे चैत्य गुरु के रूप में हमें हमारे आध्यात्मिक प्रवास में एक मार्गदर्शन करते हैं। जैसे आध्यात्मिक गुरु को उनका ही बाह्य रूप कहा जाता है, और भगवान श्री विष्णु को चरुष्णु भी कहा जाता है, क्योंकि वे एक ही स्वरूप से सर्वत्र प्रकाशित होते हैं। वे आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, हर एक जीवात्मा के, जैसे कि 84 लाख योनियों में अरबों खरबों जितने भी जीव है, हर एक जीवात्मा के हृदय में वे स्थित है। फिर उसके लिए ना तो किसी देश की मर्यादा है, ना किसी धर्म की मर्यादा है, ना किसी जाति की मर्यादा है। कोई गोरा हो, काला हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, हर एक के हृदय में भगवान श्री विष्णु परमात्मा के रूप में विद्यमान है, और वे ही शिरोदक्षायी विष्णु है। तो मूल महाप्रदीप, जैसे एक प्रदीप से कई प्रदीप हम जलाते हैं, तो मूल प्रदीप की ज्योति वैसी ही रहती है और उसी प्रकार से वो अन्य दीपों में भी प्रज्वलित रहती है। तो वे जो मूल महाप्रदीप है श्री गोविंद, वे ही सर्वोत्तम आराध्य है। और इसलिए ब्रह्मा जी यहां पे कहते हैं कि मैं उन गोविंद का भजन करता हूं जो इस महाप्रदीप के रूप में कई अपने अवतारों के रूप में प्रज्वलित रहते हैं। फिर आगे जाके 37वें श्लोक में भगवान के जो प्रथम पुरुष अवतार हैं, उनका वर्णन किया जाता है, और उनका नाम है कारणोदकशायी विष्णु, जिनको महाविष्णु भी कहा जाता है। तो वे कहते हैं, यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा निद्रामनंद जगदंड सरोम कूपहा आधार शक्तिमवलम्य पराम स्वमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो यहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनंत जगदंड सरोम कूपहा, कि जिनके रोम में या रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड विद्यमान है, और आधार शक्तिम पराम, उनकी जो पराम यानी श्रेष्ठ आधार शक्ति जो है, यानी जो इस भौतिक जगत के आधार स्वरूप है, और वे अपने ही स्वमूर्ति पे कौन सी स्वमूर्ति है वो? तो अनंत शेष, जो कि भगवान के ही आधार शक्ति है, जिनके फनों के ऊपर पूरा ब्रह्मांड स्थित है। तो वे अनंत शेष, उनके ऊपर महाविष्णु, जिनके रोमकूपों में से अनंत अनंत ब्रह्मांड सृजन होते हैं, वे महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के विलास रूप है। और वे करते क्या है? तो बताते कि वे अपने शेषशय्या पे निद्रा, योग निद्रा में रहते हैं। आप सोचिए, वे निद्रा में है तो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है। तो ये ब्रह्मांड जो है, जैसे कि आजकल के जो तथाकथित बुद्धिजीव वैज्ञानिक है, वे बताते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड की निर्मिति किसी एक बड़े विस्फोट से हुई है। जिस व्यक्ति के पास सर्वसामान्य बुद्धि है, विचार करने की क्षमता है, वो समझ सकता है कि आज तक किसी भी उद्रेक से कोई भी निर्मिति हुई नहीं है। तो उसी से हमें समझना चाहिए कि इस पूरे ब्रह्मांड के निर्मिति का मुख्य कारण क्या है। वो यहां पे बताया गया है कि भगवान महाविष्णु के रोमकूपों से सारे ब्रह्मांड, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। और इनकी आयु क्या है इन ब्रह्मांडों की, इसके बारे में अगले श्लोक में बताया गया है। और वो है 48वां श्लोक। यहां पे कहते हैं ब्रह्मा जी, यस्य कणिश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजः जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् सह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो यहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिन महाविष्णु का एक निश्वास बाहर निकलकर जितने समय तक वह बाहर स्थित रहता है, उनके रोमकूपों से प्रकटित ब्रह्मांडपति यानी ब्रह्मा जी उतने ही काल तक जीवित रहते हैं। वे महाविष्णु जिनके कला विशेष अर्थात अंश के अंश है, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। देखिए, जितने भी वैष्णवगण हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान की महानता को जानना। और उसी महानता का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कई बार हम भगवान को बहुत सहजता से ले लेते हैं, क्योंकि उनकी महिमान, उनके गुण, उनकी लीलाएं हम मनुष्यवत ही समझ लेते हैं। क्योंकि भगवान भी जब नरवत लीला करने के लिए आते हैं, तो वह ऐसे ही प्रतीत करते अपनी सारी लीलाएं कि देखने वाला व्यक्ति उनको आम व्यक्ति के समान ही समझ लेता है। एक सर्वसामान्य मनुष्य के तरह ही वे लीलाएं करते हैं, अपनी भगवत्ता वहां पे ज्यादा प्रकटित नहीं करते। और इसी कारण हम देखते हैं कि जब भगवत गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, वो विराट पुरुष रूप देखने के पश्चात अर्जुन बोला कि हे भगवान, मुझे माफ करना, कभी मैंने सखेति मत्वा, कभी मैंने आपको मेरा सखा मानकर आपके कंधों पे हाथ डाला, आपके साथ बैठ के खाया, आपके साथ सोया, आपके साथ घूमा, और कई बार तो मैंने आपका उपहास भी किया मित्र समझ के, लेकिन आप मुझे क्षमा करें उसके लिए। क्योंकि तब तक उनकी महानता का पूरी तरह से ज्ञान अर्जुन को नहीं हुआ था, और जिस समय वो उस महानता का ज्ञान हो गया, तब से उसने भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार किया। तो हमें भी अगर भगवान की भक्ति करनी है तो उनकी महानता को समझना चाहिए। और उसी महानता का निरूपण स्वयं ब्रह्मा जी जो कि हमारे आद्य आचार्य है हमारे संप्रदाय के, इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के, वे स्वयं यहाँ पे बताते हैं कि आप समझो, मैं जो व्यक्ति हूं जिसे सृष्टि का कर्ता कहा जाता है, वो मैं ब्रह्मा, जिसकी आयु मर्यादा 100 वर्ष है, और ये 100 वर्ष कैसे है तो 432,000 वर्ष जो हमारे हैं वो उनका केवल एक दिन है, उसी प्रकार की उनकी रात्रि है, गुणा 30 कर लो और गुणा 12 कर लो तो उनका एक वर्ष हो जाएगा, और उसको 100 से गुण लो तो इतनी उनकी लंबी आयु है, जिसके सामने हमारा जीवन एकदम शुद्र समय तक है, यानी उनके निमेश पलक में हम कितनी बार जन्म लेके सिधार चुके होते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी उनका जो जीवन काल है वो कितना है, भगवान के एक अंश के रूप में अगर देखा जाए तो महाविष्णु जो कि भगवान के प्रथम अंश जो नारायण है, उन नारायण के ये अंश है, यानी भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार महाविष्णु जो है, उनका जो निश्वास का समय है, सांस ले ली और सांस छोड़ दी, तो ये सांस छोड़ने का जो उनका समय है वो एक ब्रह्मा की आयु है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि भगवान श्री महाविष्णु जो है, जो कारणोदक्ष है विष्णु, जो कि भगवान के एक अंश के अंश है, उनके निश्वास का समय इतना है। क्यों भगवान को अनंत कहा जाता है, क्यों उनको कारणों के कारण कहा जाता है, इसीलिए ही, क्योंकि हमारी तुलना से अगर ये कालगणना का हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे बुद्धि के बाहर है, तो कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान को जानने के लिए कहा गया कि उनसे जानो जिन्हें ने भगवान को जाना है। तो ब्रह्मा जी स्वयं यहां पे बता रहे हैं, वे कहते कि मैं ऐसे भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूं जिनके अंश के अंश जो महाविष्णु है, जिनका निश्वास का काल एक ब्रह्मांड का अस्तित्व काल है। तो आप समझो वे गोविंद जो है वो कितने अपार सामर्थ्यशाली होंगे। हम किसी भी लल्लो पंजो को भगवान कह देते हैं, और आजकल तो भारत भूमि भगवान फैक्ट्री बन गई है, हर साल कोई ना कोई भगवान आता है, और देखते भी है कई भगवान जेल में पड़े हुए, कई भगवान सिफिलिसिस होके मर गए हैं, और किसी को भी हम भगवान बोल देते हैं। तो थोड़ा समझना चाहिए हमें, शास्त्र यहाँ पे हमें बताते हैं कि भगवान के गुण क्या है, उनके कार्य क्या है, उनकी लीलाएं कब है। जब तक हम प्रमाणित शास्त्रों के द्वारा इन्हें समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम अपने संस्कृति को, अपने शास्त्रों को केवल एक कल्पना, परिकल्पना समझ लेंगे। और आजकल वही हो रहा है, क्योंकि ये जो ज्ञान है अगली पीढ़ियों को अगर हमें देना है तो ये ज्ञान हमें स्वयं पहले प्राप्त करना पड़ेगा। और इसलिए हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हमने जो मंदिर बनाए हैं वे शिक्षण संस्थाएं हैं, जहां पे आध्यात्मिक प्रशिक्षण आपको दिया जाता है, ये आध्यात्मिक शास्त्र आपको सिखाया जाता है। अगर आपकी दृढ़ इच्छा हो, प्रामाणिक इच्छा हो, तो निश्चित रूप से ये ज्ञान आपको पूरी परंपरा के द्वारा दिया जाता है, जिस ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को पूरी तरह से अपनाकर भगवान की भक्ति निस्सिम भाव से कर सकते हैं। उसी के लिए ये सारा प्रपंच किया गया है। फिर आगे बताते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। तो हमने देख लिया कि महाविष्णु के रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड में हम निवास करते हैं। तो इनमें प्रकाशित होने वाले और इनको प्रकाशमान करने वाले जो है उनकी चर्चा अगले श्लोक में की गई है, श्लोक संख्या 49 में। और यहां पे बताते हैं, भास्वान यथाश्मस कलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यभितद्वतत्र ब्रह्माय येष जगदंड विधान करता गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वे यहाँ पे कहते हैं कि भास्वान यथाश्म शकलेशु निजेशु तेजः। भास्वान यानि यहाँ पे सूर्य को भास्वान कहा गया है। जैसे सूर्य अपने नाम से प्रसिद्ध प्रस्तर खंडों में अर्थात सूर्यकांत मणि में कुछ परिमाण में अपना तेज प्रकाश करते हैं और उसके द्वारा स्वयं दहन आदि कार्य करते रहते हैं, उसी प्रकार इस प्राकृत सृष्टि व्यापार में यह एष ब्रह्मा जो अपने अंश से या विशेष योग से जीव में स्वयं ब्रह्मा होकर ब्रह्मांड में व्यष्टि सृष्टि करता है, मैं उन आदि पुरुष गोविंद को प्रणाम करता हूं। यहां पे ब्रह्मा जी का वर्णन आया है। अभी जैसे पहले हमने माता दुर्गा के बारे में देखा, उनके सृजन और उनके कार्य के बारे में, उसके पश्चात शिव तत्व को समझने का प्रयास किया, और आज हमने 3 श्लोकों में देखा कि ब्रह्मा जी ने महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षोदक्षय विष्णु और उनके प्रभाव, उनके कार्य इस ब्रह्मांड में क्या है उसके बारे में चर्चा की। और अब इस ब्रह्मांड के जो द्वितीय कर्ता है, सृष्टिकर्ता जिनको कहा जाता है, जो दर्शन दृश्यमान जगत को जो निर्माण करते हैं, उन ब्रह्मा का वर्णन यहां पे किया गया है। तो जैसे एक सूर्यकांत मणि रहता है, अगर आपने जैसे हम बचपन में स्कूल में हमने कई सारे प्रयोग लिए हैं, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस लेकर हम सूरज में पकड़ लेते तो उन सूर्य किरणों को एक जगह पे एक बिंदु पे केंद्रित करते किसी भी चीज को हम जला सकते थे, पेपर जलाते थे, कॉटन बॉल्स जलाते थे। तो जैसे हालांकि वो जो बहिर्गोल और अंतर्वक्र भिंग जो रहता है या जिसको सूर्यकांत मणि कहा जाता है, उसके द्वारा सूर्य की किरणें एकत्रित होकर किसी एक वस्तु पे जाए तो उस वस्तु को वो भस्म करना, जलाना शुरू कर देती है। तो उनको जलाने का सामर्थ्य ये सूर्यकांत मणि में है या सूर्यकांत मणि में जो सूर्य के किरण आते हैं उनमें है, यहां पे एक उदाहरण दिया गया है, एक दृष्टांत दिया गया है जिसके द्वारा ब्रह्मा जी की कार्यक्षमता क्या है वो हमें ज्ञात होगी। तो यहां पे ब्रह्मा जी जो है, जो बाह्य रूप से हमें इस ब्रह्मांड के रचयिता दिखाई देते हैं, तो वे ब्रह्मा जी कौन है? वे इस सूर्यकांत मणि के जैसे हैं। जैसे ये सूर्यकांत मणि एक माध्यम है जिसके द्वारा ये सूर्य की किरणें दूसरी ओर से निकलकर उस वस्तु को जला देती है, लेकिन वो जलाने की क्षमता सूरज के किरणों में है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के हर चीज को बनाते हैं। तो उनका कार्य कैसा है? एक स्थापति जैसा, यानी इंजीनियर जैसा। जैसे कोई भी खास करके स्थापति जो रहता है, सिविल इंजीनियर, वो क्या करता है? सीमेंट, उसके पश्चात गिट्टी, एग्रीगेट्स, वालो, सैंड, इन सब को एक विशेष यंत्र में मिला जुला के एक मिश्रण बना के फिर कंक्रीट बनाता है और उसके द्वारा फिर कई चीजों की निर्मिति होती है। तो हम बोलते कि ये उस इंजीनियर ने बनाया। तो इंजीनियर ने सब कुछ बनाया या बनी बनाई चीजों को इकट्ठा करके कुछ आकार दिया? गिट्टी तो उसने बनाई नहीं, वो तो उसने इसी निसर्ग से प्राप्त की है, चट्टानों से निकाली है। सीमेंट भी उसी प्रकार से निकाला हुआ है, वालू भी वही वालों के खादानों से उसने निकाली, और इन सारी चीजों को इकट्ठा करके एक उनको रूप दे दिया। तो रूप देने का कार्य उस इंजीनियर ने किया। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी महत तत्व में से, जो कि 24 तत्व है जिनसे ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, और वे सारे महतत्व जो है, वो मूल 25 घटक जो है, वे ब्रह्म भगवान से ही आते हैं। तो आदि कारण भगवान श्री गोविंद से निर्मित की गई सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके अलग अलग रूपों ने ब्रह्मा जी ने रखा है। तो ब्रह्मा जी मूल रूप से कर्ता नहीं है सृष्टि के, तो वे द्वितीय कर्ता है, यह हमें समझना चाहिए। ब्रह्मा जी स्वयं यहां पे अपने स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मा येष जगदंड विधान करता, वो जो ब्रह्मा है वो जगदंड विधान करता है। किस प्रकार से? तद्वत यानी उस प्रकार से। कैसे? जैसे कि सूर्यकांत मणि में सूर्य की किरण पड़ के वो सूर्यकांत मणि किसी चीज को जला देता है, यानी केवल एक माध्यम है। उसी प्रकार से इस सृष्टि के निर्मिति के माध्यम ब्रह्मा जी है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी नहीं है, यह हमें समझना चाहिए। और उसी का उदाहरण यहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी ने ही दिया हुआ है। तो हमने माता दुर्गा के बारे में देखा, शिव जी के बारे में देखा, भगवान श्री विष्णु के 3 पुरुषावतार है उनके बारे में देखा, और ब्रह्मा जी के बारे में भी देखा। और आगे जाके वे चर्चा करते हैं श्री गणेश, सूर्य आदि देवताओं के बारे में, और उसके बारे में सविस्तर चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही जुड़े रहने के लिए। और अगर आपके कोई संदेह है, प्रश्न है इस चर्चा के बारे में, तो आप कमेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं, और कल समय रहा तो फिर हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जो पिछले 3-4 प्रवचनों से जो हमने शिव तत्व के बारे में चर्चा की, वो काफ़ी हद तक आपके समझ में आया होगा। और आज जो हमने भगवान विष्णु और उनके 3 पुरुषावतार जो है उनकी चर्चा की, और साथ में ही ब्रह्मा जी के कार्य तथा उनके उत्पत्ति के बारे में चर्चा की, और कल हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री गणेश जी के बारे में, कि सबके विघ्नों को हरण करने की शक्ति श्री गणेश जी के पास कहाँ से आती है, उस शक्ति का स्रोत क्या है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।